بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. ملاحظہ کیجیے اشفاق احمد خان کی تحریر سلسلہ دور نبوت کے بچے سے علم کا سمندر جو 32 صفحات پر مشتمل ہے. پیشے لفظ عزت شہرت اور دولت پانے کی خواہش دنیا کے ہر شخص کے دل میں ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ادھر خواہش کا بیج دل و دماغ کی سرزمین میں بویا اور ادھر اس نے سرسبز و شاداب توانا پودے کی شکل اختیار کر لی. خواہشات، آرزوئیں اور خواب زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن یہ سرمایہ اس وقت تک کوئی اہمیت اور وقت نہیں رکھتا جب تک آپ ان خواہشات اور خوابوں کو، جن کا بیج اپنے آپ دل و دماغ میں بوتے ہیں، محنت اور عمل کے پانی سے نہیں سینچتے. خواہش کی تکمیل سے محنت عبارت ہے، خوابوں کی تعبیر عمل سے ہاتھ آتی ہے. وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اوائلی عمری ہی سے ایسی رہنمائی میسر آ جاتی ہے جو ان پر شہرت اور عزت کے دروازے کھول دیتی ہے. وہ بھی ایک ایسی ہی ہستی تھے جنہیں بہت عزت اور شہرت ملی، کیونکہ انہیں دنیا کے عظیم ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اپنا بچپن گزارنے کا موقع ملا تھا. ان کی شفقت، محبت اور تربیت نے ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کیا اور وہ علم و آگاہی کے ایک بلند مقام پر پہنچ گئے. انہیں بچپن ہی سے علم کے حصول سے خاص شغف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی انہیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں، مسجد میں ہوتے یا گھر میں، جہاں بھی ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مجالس میں ہوتے یا میدان جنگ میں، وہ ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے. اس کی دو وجہ تھیں، ایک تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، دوسرے اس علم کے حصول کی تڑپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھتی تھی جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہم نشینی نے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیا تھا. ان کے مزاج میں علمی سنجیدگی در آئی تھی. ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کی دعا کی تھی، اور کئی مواقع پر اللہ کے حضور یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ، اسے مفسر قرآن اور دین میں سمجھ والا بنا دے. انہی دعاؤں کا اثر تھا کہ ان کا علم کا اعتراف بڑے بڑے صحابہ کرام نے کیا. انہیں علم کا سمندر کے خطاب سے نوازا گیا. وہ علم کا ایسا سرچشمہ تھے جن کے سامنے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل بھی سرنگو ہو جاتے. جن مسائل کے حل میں دیگر لوگ عاجز آ جاتے، وہ انہیں آنن فانن حل کر دیتے. ان کا علمی مقام، فقہ میں مہارت اور اباطنی بصیرت اپنے دور کے سب اہل علم سے نمایاں تھی. عبادت اور پرہیزگاری میں وہ بے مثال تھے. عبادت کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ جو عبادت مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہیں کرتی، آدمی کے دل کو نرم نہیں کرتی، فقیر و ضرورت مند پر ترس کھانا نہیں سکھاتی، وہ عبادت ناقص اور نامکمل ہے. علم کا یہ سمندر عظیم مفسر قرآن اور اپنے دور کے فقیہ کون تھے؟ کتاب کا مطالعہ آپ پر ان کا نام آشکار کر دے گا. والسلام، عبد المالک مجاہد. شاہ روم کا دربار سجا تھا. لوگوں کی اکثریت گہری سوچ و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی. یہ وہ دور تھا جب رومیوں نے مسلمانوں سے مسلسل شکست کھانے کے بعد ہار مان لی تھی. مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک ان پر بیٹھ چکی تھی. اس کے بعد گویا انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ان کی لڑائی میدان جنگ میں ہرگز نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو کسی اور محاذ پر، اور یہ محاذ کون سا ہو. یہی طے کرنے کے لیے دربار کا ہر فرد غور و فکر کر رہا تھا. کچھ ہی دیر بعد شاہ روم کے ایک وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، آقائے نعمت، میرے ناقص ذہن میں ایک تجویز آئی ہے. شاہ روم نے گہری نظروں سے وزیر کو دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، جلدی سے بیان کرو، شاید اس مسئلے کا کچھ حل نکل آئے. بادشاہ سلامت، مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین ایک سچا دین ہے. ان پر یہ دین بذریعہ وہی ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ان کا مقابلہ ہم صرف اپنے علماء ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں. علماء کے ذریعے؟ شاہ روم کو حیرت ہوئی. جی میرے آقا، हमारे आलिम अपने इल्म की रोशनी में इनसे ऐसे मुश्किल और पेचीदा सवाल करें जिनका जवाब देना इनके लिए नामुमकिन हो। इस तरह इनकी ये सच्चाई के दावे को झुठलाया जा सकेगा। शाह रूम को तजवीज़ पसंद आई, उसने अपने उल्मा को तलब किया और अपना मुद्दा उनके सामने रखा। उल्मा ने शाह रूम की फहम व फरासत को सराहा और उसे यकीन दिलाया कि चंद दिनों में वो ऐसे सवाल बना लाएंगे जिनका जवाब देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। चंद दिनों के बाद दरबार फिर लगा हुआ था। शाह रूम के दरबारी उल्मा ने एक सवाल नामा तैयार करके उसकी खिदमत में पेश कर दिया था। शाह रूम ने सवाल नामा पढ़ा तो वो भी हैरान रह गया। सवाल वाकई बहुत मुश्किल थे, खुद उसे भी वो एक दो सवालों की समझ नहीं आई। उल्मा ने शाह रूम के मुतालबे पर उन सवालों के जवाब बयान किए तो शाह रूम ने बेहद मुतासर हुआ। उसे यकीन हो गया कि अहले अरब उन सवालों के जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। एलची को सवाल नामा देकर भेज दिया गया। ये सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का वाक़िया है। शाह रूम का एलची ख़त लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और ख़त पेश करते हुए गुजारिश की कि शाह रूम को चंद मसाइल में पेचीदगी का सामना है। अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए उसने आपके पास ये ख़त भेजा है और इन सवालों के जवाब मांगे हैं। माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त में दर्ज सवालात पढ़े तो मुस्कुरा दिए। यकीनी तौर पर शाह रूम इनका इम्तहान लेना चाह रहा था। उन्होंने बगैर किसी गौर व फिक्र और हिचकिचाहट के ख़त अपने बेहतरीन साहिब इल्म के पास भेज दिया। उन्होंने सवालात पढ़े, इन्हें इनके जवाब तलाश करने में ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आई। उन्होंने कलील वक्त में इनके जामे किस्म के जवाब तहरीर कर दिए। सवाल कुछ यूं थे: अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कलाम कौन सा है? अल्लाह के हाँ सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कौन है? अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाली औरत कौन है? वो कौन सी चार चीज़ें हैं जिनमें रूह थी लेकिन वो माँ के पेट में नहीं थी? वो कौन सी कब्र है जो अपने साथी को साथ लेकर चलती फिरती रही? वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज सिर्फ़ एक बार तुलू हुआ था? कौसे कज़ा क्या है? मजरा क्या होता है, क्या चीज़ है? इस साहिब इल्म हस्ती ने जो जवाब तहरीर किए वो कुछ यूं थे: अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कलाम सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाले इंसान आदम अलैहि सलाम हैं, क्योंकि इनको अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा फरमाया, अपनी रूह उनमें फूंकी, उसको फरिश्तों से सजदा करवाया और तमाम चीज़ों के नाम भी सिखाए। और तुम्हें अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज्जत वाली औरत मरियम बिनते इमरान अलैहिमा सलाम हैं। वो चार चीज़ें जिनमें रूह थी मगर वो माँ के पेट में नहीं थी, वो ये हैं: आदम अलैहि सलाम, हव्वा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम की लाठी, इब्राहिम अलैहि सलाम का मेंढा जो इस्माइल अलैहि सलाम की जगह कुर्बान किया गया, वो कब्र जो अपने साथी को साथ लेकर चली थी वो मछली थी जो यूनुस अलैहि सलाम को साथ लेकर चली थी, वो जगह जहाँ आज तक सिर्फ एक बार सूरज तुलू हुआ था वो समंदर है जिसे मूसा अलैहि सलाम के लिए दरमियान से दो हिस्से कर दिया गया था और बनी इसराइल ने उसे सही सलामत अबूर कर लिया था। कौसे कुज़ा से मुराद अहले ज़मीन का गर्क होने से महफूज रहना है। मजरा आसमानों में एक दरवाज़ा है। शाह रूम और उसके दरबारी उल्मा को जब कासिद ने जवाब ला कर दिए तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। उनका ख्याल था कि अहले अरब बद्दू हैं, बकरियां और ऊंट चराने वाले गल्लाबान हैं। इल्म दानिश से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इनके इल्मी सवालों से इनकी जहालत और नाम निहाद ईमान का पोल खुल जाएगा। लेकिन शाह रूम अपने सवालों के जवाब हाथ में पकड़े हैरत में मुब्तला थे। जवाब पढ़कर खुद उनका दिमाग भी चकरा कर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे उम्दा और जामा किस्म के जवाब किसने दिए। वो पुकार उठा, अल्लाह की कसम ये जवाब माविया की तरफ से नहीं हो सकते। ये जवाब किसी ऐसे आदमी के दिए हुए हैं जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से है। यहाँ शाह रूम की जुमले से माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की तहकीर का पहलू नहीं निकलता था, बल्कि वो पैगंबरी के मर्तबे और मकाम को अच्छी तरह जानता था। इसी बिना पर वो समझता था कि जिस आदमी का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं, उसके लिए इन सवालों को समझना और इनके शाफ़ी जवाब देना मुमकिन नहीं। वो साहिब इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। आपका शुमार इन सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में होता है जिन्होंने बचपन ही में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और ईमान लाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़ेरे साया आ गए। आपके वालिद गिरामी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने भाई अबू तालिब की वफ़ात के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते थे, लेकिन आपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान ताखिर से किया। कुछ देर अपने इस्लाम को छुपाते रहे। जब जंगे बदर हुई तो वो मुशरिकीन ने मक्का के साथ मिलकर मुसलमानों से जंग के लिए निकले। इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो आदमी अब्बास को मिले यानी उसे पाए, वो उसे कत्ल ना करे, क्योंकि वो सिर्फ मजबूरी की हालत में निकले हैं। अबुल बसर काब बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हों को क़ैद कर लिया तो उन्होंने ख़ुद ही अपना फ़दिया अदा किया और मक्के वापस चले गए। अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हों की वो वसीयत किताबों में महफूज है जो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए की थी। कहने लगे, मैं देखता हूँ कि आपको उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हों पुकार रहे हैं, फिर आपको अपने पास बिठा लेते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा कराम के साथ आपसे भी मशवरा कर रहे हैं। मेरे बेटे, तीन बातों का ख्याल रखना। नंबर 1, झूठ ना बोलना। नंबर 2, किसी का राज उनके पास जाहिर ना करना। नंबर 3, उनके पास किसी की गीबत ना करना। अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा उम्मे फजल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने खाविन से पहले इस्लाम कबूल किया। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर कैलूला करते। उम्मुल मुमिनीन सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की खाला थीं। इन रिश्तों के हवाले से अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फजलो कमाल के इंतहाई आला दर्जे पर थे। आपकी पैदाइश भी अजब हाल में हुई। इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुशरिकीन ने मक्का मुसलमान होने वालों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाते, उनका जीना दूभर कर देते, उन्हें दीन के रास्ते से हटाने के लिए हर हरबा आजमाते, लेकिन इनकी हर चाल नाकामी से दो चार होती। जब मुशरिकीन ने मक्का अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गए तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन सा तरीक़ा हो कि ये लोग अपने आबाई दीन यानी बुतों की पूजा की तरफ लौट आए। इनके तरकश का हर तीर बेकार हो चुका था। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि मुसलमान होने वालों से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं। ये मंसूबा तय करके उन्होंने क़त्अ ताल्लुकी का अहद कर लिया और एक इकरारनामा लिखा, उसमें तहरीर था, जो आदमी भी इन पर तर्स खाएगा या इनकी हिमायत करेगा तो वो इससे खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, ना उनसे रिश्ता लेंगे और ना उनको रिश्ता देंगे। यह अहदनामा लिखने के बाद उन्होंने शुएब अबी तालिब का घेराव कर लिया। किसी को ना तो अंदर से बाहर आने देते थे और ना ही किसी को अंदर जाने देते थे। किसी आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो किसी तरीके से उन लोगों की मदद करे। हर आने जाने वाले को सख्ती से रोका जाता था। शुएब अबी तालिब में महसूर किए गए लोगों में उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और इनके खाविन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। दूसरे मुसलमानों के साथ उन्होंने भी बहुत अजियतें उठाईं। उनको खाने के लिए कुछ भी दस्तियाब ना होता तो दरख्तों के पत्ते और जानवरों के चमड़े खाकर गुजारा करते। उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को आम लोगों की निस्बत कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ें उठाना पड़ीं, क्योंकि अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश करीब थी। उस मौके पर खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके बहुत काम आईं। उन्होंने उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को हर लिहाज से तसल्ली दी, हौसला बढ़ाया। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए खाना चोरी छुपे आता था, वो उसमें से आधा खाना उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को दे देती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को बच्चा पैदा होने की बशारत सुनाई थी। खुसैदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूसरे मुसलमानों के हमरा शुएब अबी तालिब में थे तो मेरे वालिद मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں ام الفضل کو دیکھا کہ وہ حاملہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے چہرے منور فرمائے گا۔ واقعی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تنگی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے چہرے کو منور کرے گا، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے چہرے کو منور کرے گا، بلکہ فرمایا ہمارے چہروں کو منور کرے گا، گویا کہ پیدا ہونے والا ہر ایک مسلمان کے لیے خیر ثابت ہوگا۔ جب ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بچے کو جنم دیا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر خوشی خوشی خدمت اقدس میں جا پہنچے۔ اس بچے کی پیدائش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خوشی و مسرت سے مالا مال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑ کر اپنی گود میں لیا اور پھر اپنے مبارک لعاب دہن سے گھٹی دی۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے علاوہ اور کسی کو صرف اور صرف اپنے لعاب دہن سے گھٹی نہیں دی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے تھے کہ ان کے والدین کو دوسرے مسلمانوں کی طرح ہجرت کرنا پڑی۔ اس طرح عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم سنی ہی میں ہجرت کا شرف حاصل ہو گیا۔ سیرت کی کتب میں کم سنی کے باوجود آپ کا نام مہاجرین میں شامل ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کے بعد ذرا شعوری کی عمر کو پہنچے تو خود کو نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے سائے میں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت انس تھا۔ بچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، ان سے ایسا سلوک کرتے جیسا حقیقی والدین کرتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وقت چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں یعنی مدینہ میں مقیم ہوتے، مسجد میں ہوتے یا گھر میں، صحابہ کرام کی مجالس میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے، اس علم کے حصول کی تڑپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ان کا بچپن اور جوانی تعلیمات نبوی کا بہترین عکس تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیار کے ساتھ کھینچا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، عبداللہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا اور تم پیچھے ہٹ گئے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے حبیب، کیا کسی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہو، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس جواب پر حیران ہوئے، پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے علم و فہم کو زیادہ کر دے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کس طرح اپنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رات گزاری۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک برتن میں پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، عبداللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پورا پورا عمل کرتے۔ एक दिन वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद ऐसी बातें ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुझे नफ़ा देगा। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह की तरफ ध्यान कर, तू उसको सामने पाएगा। अल्लाह को आसानियों में याद रख, वो तुझे तंगियों में याद रखेगा। जब तू मांगे तो सिर्फ़ अल्लाह से सवाल कर। जब तू मदद तलब करे तो सिर्फ़ अल्लाह से मदद तलब कर। अगर तमाम मखलूक तुम्हें कोई चीज़ देना चाहे, वो नहीं दे सकती अगर अल्लाह ने वो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी। अगर तमाम मखलूक उस बात पर जमा हो जाए कि तुझे किसी चीज़ से महरूम कर दे, तुमसे किसी चीज़ को रोक ले, और अल्लाह ने वो तुम्हारी किस्मत में लिख दी है, तो वो नहीं रुक सकती। सब्र में बहुत भलाई है, अगरचा तुम इसको नापसंद करते हो। बेशक अल्लाह की मदद सब्र की वजह से आती है। कुशादगी रंजो मशक्क़त के साथ होती है, और तंगी के बाद आसानी होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए बार बार ये दुआ की, ए अल्लाह, अब्दुल्ला को कुरान का मुफस्सिर बना और दीन में समझ अता फरमा। सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें पास बुलाकर बिठा लेते और फरमाते, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन्होंने एक मर्तबा आपको बुलाया, आपके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और आपके मुंह में लुआबे मुक़द्दस डाला। फिर सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी तरह दुआ की जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, कि इसे अल्लाह इसे मुफस्सिर कुरान और दीन में समझ वाला बना दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआओं को कबूल फरमाया और अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुलंद इल्मी मकाम अता किया। आपके इल्म का एतराफ़ बड़े बड़े सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने किया। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला को कसरत इल्म की वजह से बहरे इल्म यानी इल्म का समंदर का खिताब दिया। किसी ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा कराम को छोड़कर एक कम उम्र आदमी से इल्म हासिल करते हैं। ताऊस रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब देते हुए फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा कराम को देखा कि जब उनमें किसी मसले के मुतालिक इख्तलाफ हो जाता तो सब आपकी तरफ रुजू करते। सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब कोई ऐसा मसला आ जाता जिसको आप हल ना कर सकते, तो अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते कि हमें ये मसला दरपेश है, मेरा ख्याल में आप ही इस मुश्किल मसले को हल कर सकते हैं। उबैदुल्ला बिन उतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आपसे ज़्यादा जानता हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इल्म का ऐसा सरचश्मा थे कि किसी मसले का इल्म या हल उनसे मख्फी नहीं था। एक मरतबा सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा कराम को जमा किया और साथ ही अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को भी बुलाया। फिर सहाबा कराम से पूछा, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रायतन्ना सयदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफवाजा, इस सूरत के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब दिया, इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि जब अल्लाह ताला आपको फतह से हमकिनार करे तो इससे बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ करना। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने जब अपनी ये राय दे दी तो फिर सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा, ए अब्दुल्ला, तुम इस सूरत के मुतालिक क्या जानते हो? अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, इस सूरत में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मौत से आगाह कर रहे हैं। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह से मुराद फतह मक्का है, और वरायतन्ना सयदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफवाजा आपकी मौत की अलामत है। सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा सूरह नसर की इस तफसीर से हैरान हो गए। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के इल्मी मकाम, फ़कही मर्तबे और ईमानी बसीरत ने इन्हें इस तफसीर को दुरुस्त मानने पर मजबूर कर दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को ये मकाम यूं ही हासिल नहीं हो गया था। वो बचपन ही से इल्म की बहुत ज़्यादा लगन और शौक़ रखते थे। जिस चीज़ का आपको पता ना होता उसके मुतालिक अहले इल्म से बार बार पूछते, जब तक दिलो दिमाग मुतमईन ना हो जाता अपना सवाल तर्क ना करते। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ایک بات پوچھتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اپنی علمی پیاس بجھاتے رہے۔ عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے پاس تشریف لائے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں دن کیا کیا۔ ابو رافع نے جواب دیا، اسے فوراً لکھ لیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک انصاری سے کہا، آؤ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوچھتے ہیں، وہ آج کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ وہ انصاری بولے، اے ابن عباس، افسوس ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ لوگ تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، جن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اور آپ دوسروں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری کو وہیں چھوڑا اور خود صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث رسول کے متعلق علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اطلاع ملتی کہ فلا صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو میں اس صحابی کے گھر جاتا اور ان کی دہلیز پر بیٹھ جاتا۔ جب وہ باہر آتے اور مجھے دیکھتے تو پکار اٹھتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، کیسے آنا ہوا؟ آپ مجھے حکم بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ میں کہتا، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کروں۔ آپ کی بلند علمی شان ہی تھی جس نے آپ کو ایک ایسا انوکھا اعزاز بخشا جو شاید ہی کسی عام انسان کو حاصل ہوا ہو۔ وہ اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے والد گرامی کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ آدمی میرے والد گرامی سے بے نیازی اور بے رخی کا اظہار کر رہا تھا، چنانچہ ہم وہاں سے چلے گئے۔ میرے والد مجھ سے کہنے لگے، عبداللہ، کیا تم نے اپنے چچا کے بیٹے کو دیکھا؟ وہ مجھ سے منہ پھیرے ہوئے تھا۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے گفتگو فرما رہے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آدمی موجود تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرے والد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ابھی آپ کے پاس کوئی آدمی موجود تھا؟ مجھے عبداللہ نے بتایا کہ آپ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے دیگر خوبیوں کے ساتھ بردباری اور حوصلہ مندی سے بھی نوازا تھا، کیونکہ انہیں محبوب ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کبھی نہیں بھولتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ مومن بندہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی آدمی نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس سے فرمایا، تم نے مجھے گالی دی ہے، سنو، مجھ میں تین خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، میں جب سنتا ہوں کہ مسلمانوں کا حاکم اپنے فیصلے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، حالانکہ شاید میں خود اس کے پاس کبھی اپنے بھائی کا جھگڑا لے کر نہ جاؤں۔ نمبر دو، جب کسی بھی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، حالانکہ میرے پاس چرانے کے لیے کوئی جانور نہیں۔ نمبر تین، جب مجھے قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ تمام مسلمان میری طرح اس کو پہلے سے ہی جانتے ہوں۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ جو آدمی دوسروں کی خوشیوں کو ترجیح دیتا ہے، ان کے مفاد کو فوقیت دیتا ہو اور وہ اپنی ذات کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے خسارے کی فکر نہیں کرتا، علم وہی اچھا ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما علم کا سمندر تھے، ان کی زندگی اس علم پر عمل کی شاندار تصویر تھی، ان کا تمام وقت اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक मर्तबा मैं मक्के से मदीने तक सफ़र में अब्दुल्ला रदिल्लाहु ताला अन्हो के साथ था। जब कभी हम रास्ते में ठहरते तो वो आदमी रात तक कयाम करते तो वो आधी रात तक कयाम करते, जब चलते तो तस्बीहात का वर्द जारी रखते। समाक रहमतुल्लाह से रिवायत है कि एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हुमा की बिनाई बीमारी की वजह से मुतासर हो गई। मौलजों ने उन्हें कहा, हम आपका इलाज तो कर देते हैं मगर 5 दिन तक आप नमाज अदा नहीं करेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हुमा ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, तुम तो 5 दिन की नमाजों की बात करते हो, मैं एक रकात छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी वो क़यामत के रोज़ अल्लाह के को गुस्से की हालत में पाएगा। आप इबादत के हवाले से फरमाया करते थे कि जो इबादत मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा नहीं करती, आदमी के दिल को नर्म नहीं करती, फ़कीर और ज़रूरतमंद पर तर्स खाना नहीं सिखाती, वो इबादत नामुकम्मल और नाकिस है। इसीलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते थे, मेरे नज़दीक एक माह तक या एक जुम्मे तक या जब तक अल्लाह चाहे किसी मुसलमान घराने की किफ़ालत यानी देखभाल खर्च उठाना करना बार बार हज करने से ज़्यादा महबूब है। एक मामूली सी चीज़ जो मैं अपने दीनी भाई को तोहफ़ा दूँ वो मुझे अल्लाह की राह में 1 दिनार खर्च करने से ज़्यादा महबूब है। इंसान ज़िंदगी में अपने कौल फ़ैल की वजह से आगे बढ़ता है। अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो गुनाह करने वालों को यूँ ताकीद फरमाते, ए गुनाह करने वाले, करामन कातिबन से तेरा हया ना करना, तेरे गुनाह से कहीं बड़ा जुर्म है। ए गुनाह करने वाले, वक्ते गुनाह तेरा खुश होना उस गुनाह से बड़ा जुर्म है जो तू कर चुका। आपको मालूम है अल्लाह ताला आपसे क्या मामला करने वाला है। गुनाह में कामयाब होकर खुश होना उस गुनाह से बड़ा जुर्म है जो तू कर चुका है। अगर तू गुनाह में नाकाम हो जाए तो काफ़ी अफसोस मिलता है, ये उस गुनाह से बड़ा जुर्म है। तेरा हुआ से हवा से खौफ खाना जब वो गुनाह के वक्त दरवाजे से टकराती है और पर्दा हरकत करते हैं, उस वक्त तो हालत गुनाह में होता है। तेरा दिल उस वक्त अल्लाह के खौफ से नहीं कांपता कि वो तेरी तरफ देख रहा है, उस गुनाह से बड़ा जुर्म है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हु के कौल व फ़ैल में कामिल यकसुई पाई जाती थी, जो कहते हैं कि इसके मुताबिक अमल भी करते, लोगों को बुराइयों से रोकते और ख़ुद भी बुराइयों से इज्तनाब करते, अक्सर व बेशतर दिन को रोज़ा रखते और रात को इबादत में मसरूफ़ रहते। आपकी मजलिस में कोई आलिम आकर बैठता तो आप उसके साथ इंतहाई तवाज़े और इनकसारी से पेश आते, अगर कोई साइल सवाल करता तो उसे तसल्ली बख्श जवाब देते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हुमा की इल्मी शान, उनकी मामला फहमी और बातिनी फ़िक्र की अजमत को सब ने तस्लीम किया, सभी ने उनमें खैर और भलाई पाई। जब सासा बिन सुहान रदियल्लाहु ताला अन्हो बसरा से सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुतालिक दरियाफ़्त किया, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा उनकी तरफ से बसरा के वाली मुकर्रर किए गए थे। सासा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अमीरुल मुमिनीन, वो 3 चीज़ों पर अमल करते हैं और 3 चीज़ों को छोड़ देते हैं। नंबर 1, जब वो बात करते हैं तो लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। नंबर 2, जब उनके सामने किसी के मुतालिक बात की जाती है तो बड़े गौर से उसकी बात सुनते हैं। नंबर 3, जब दो मुख्तलिफ कामों में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो आसान काम को इख्तियार करते हैं। और जिन 3 चीज़ों को वो छोड़ देते हैं वो ये हैं, नंबर 1, लड़ाई झगड़ा, नंबर 2, की कमीने से दोस्ती, नंबर 3, वो चीज़ जिसमें मलामत का अंदेशा हो। साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से बढ़कर कोई हाजिर जवाब नहीं देखा, बल्कि इनसे बढ़कर ना अक़ल में देखा और ना इल्म और ना हौसले में। अबू वाइल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हज के मौके पर खुतबा इरशाद किया। आपने सूरह नूर का आगाज़ किया, उसको पढ़ते रहे और तफसीर फरमाते रहे। मैं उनके शानदार अंदाज़े गुफ्तगू को देखकर ये कहने पर मजबूर हो गया कि आज तक मैंने उन जैसी तकरीर नहीं सुनी, ना मैंने उन आज तक उन जैसा कोई आदमी देखा। अगर फ़ारसी, रूमी और तुर्की भी आपकी बात को सुन लेते तो वो भी मुसलमान हो जाते। मसरूक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब भी अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को देखता तो बेसाख्ता मेरी ज़बान पर ये अल्फाज जारी हो जाते कि लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जब वो बोलते तो मैं कहता है कि सबसे ज़्यादा फसीह व बलीग, जब कोई हदीस बयान करते तो मैं कहता है कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म। सहाबा कराम और ताबईन की आपके बारे में ये आरा बिला वजह नहीं थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल करके उनके जहन जहन को उलूम से भर दिया था। एक मरतबा सैदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने उन असहाबे रसूल से लैलतुल क़द्र के बारे में पूछा, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। उन सब की बातों को सुनकर सैदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, आप अपनी राय पेश नहीं कर रहे, कौन सी चीज़ माने है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह एक है और एक ही को पसंद करता है, लेकिन उसने दुनिया के साथ दिन मुकर्रर किए जो बार बार आते जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को 7 चीज़ों से पैदा किया, उसने हमारा रिस्क 7 चीज़ों से पैदा किया, उसने हमारे ऊपर 7 आसमानों को पैदा किया, उसने हमारे नीचे 7 ज़मीनों को पैदा किया, उसने हमें 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात अता की, उसने अपनी किताब में 7 करीबी रिश्तेदारों से निकाह करने से मना फरमाया, उसने अपनी किताब में विरासत को 7 रिश्तेदारों में तकसीम फरमाया, हम अपने जिस्म के 7 आज़ा से सजदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए और सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। आपने जमारात को 7 कंकरियाँ मारी। इसी बिना पर मैं लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 7 रातों में तसव्वुर करता हूँ। सैदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का जवाब सुनकर हैरान हुए, फिर फरमाने लगे, मेरी भी यही राय है, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको आखिरी अशरे में तलाश करो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इल्मी जहाद ही नहीं करते थे बल्कि वो अमली जहाद में भी हिस्सा लेते थे। इनकी इबादत, तक्वा और परहेजगारी जहाद के रास्ते की रुकावट नहीं थे, बल्कि ये तो शौक़ जहाद को और भी तेज़ कर देते थे। उन्होंने कई जंगों में शिरकत की और शुजात का मुजाहरा किया। उन्होंने सबीतला, तब्रिस्तान, जमल और सफीन की जंगों में दिलेरी और जुर्रत से कारनामे सर अंजाम दिए। अल्लाह ताला के हुजूर रात की इबादत उनको दिन में रिज़्क़ हलाल कमाने से नहीं रोकती थी, ना ही हुसूल इल्म के सिलसिले में कोई रुकावट थी, और ना ये चीज़ें इन्हें जहाद से रोकती थी। जब ऐलान जंग होता कि ए मुजाहिद, अल्लाह की राह में सवारी पर बैठ और मैदान जंग की तरफ निकल, तो फ़ौरन खड़े हो जाते और अल्लाह की राह में जहाद करते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने 71 साल उम्र पाई। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर रखी थी। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में, कभी इबादत की हालत में, कभी तालिबे इल्म के रूप में, कभी इल्म सिखाने का फ़र्ज़ अंजाम देते हुए, और कभी जंग के मैदान में शुजात और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए। गर्ज़ आपकी तमाम ज़िंदगी उम्मत इस्लामिया के लिए भलाई थी। आपकी ये भलाई हमेशा इल्म को फैलाती रहेगी, ऐसी भलाई जो किताबों के औराक और लोगों के सीनों में अहादीस के तौर पर महफूज है। ये सारी उम्र के लिए एक सदक़ा जारिया है। 68 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। हर एक ने मौत से हमकिनार होना है। हर चीज़ एक दिन फना हो जाएगी। बका सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। सिर्फ वही ज़ात हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। यहाँ पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हुआ। आगे की तफसील अगले पार्ट में जानिए। जज़ाकअल्लाह।